ओम शांति। आज का रात्रि क्लास है 26/5/68। बच्चों ने अपना अपना अनुभव सुनाया, कोई को अनुभव होता है ना, तो उनको अनुभव सुनाने की प्रैक्टिस अच्छी रहती है। पढ़े लिखे भी होते हैं और यहाँ तो है सभी का नया अनुभव। भक्ति मार्ग तो आधा कल्प से चला चला आया है, उनको नया अनुभव नहीं कह सकते हैं। भक्ति मार्ग में तो वेद शास्त्र महाभारत आदि आदि यही चीजें रहती हैं। ये नई नॉलेज तो है ही नहीं। जन्म जन्मांतर तुमने भक्ति मार्ग के शास्त्र तो पढ़े, यहाँ तो है बिल्कुल नई बात। भक्ति से बिल्कुल न्यारी बातें हैं। अभी बच्चों को सभी चित्रों आदि का ज्ञान मिल गया है। ये चित्र तो भक्ति मार्ग के आदि से ही बनते चले आए हैं। शास्त्र तो बाद में बने हैं। पहले तो चित्र ही बने थे, गुफाओं में चित्रकारी करते थे, चित्रों के आधार पर बाद में शास्त्र बनाए गए। वो तो द्वापर युग था, तुम्हारा तो युग ही अलग है। ये है पुरुषोत्तम संगम युग और ये है ब्राह्मण कुल। आगे तो इस ब्राह्मण कुल का पता भी नहीं था कि हम ब्रह्मा की डायरेक्ट संतान बनेंगे। वो कुख वंशावली ब्राह्मण भी नहीं जानते हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग कैसे है, उनको पुरुषों में उत्तम बनने वाले पार्ट का पता ही नहीं है। तुम बच्चों को तो अच्छी नंबरवार जानकारी है, क्योंकि तुम हो मुख वंशावली ब्राह्मण। ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बातों पर विश्वास करते हो और वो है कुख वंशावली ब्राह्मण। उन्हें ब्रह्मा की कोख से अर्थात गोद से प्यार है, गोद अर्थात देह से प्यार है, मुख से निकली हुई वाणी से प्यार नहीं है। तो देखो शास्त्रों में कुख वंशावली और मुख वंशावली का भी वर्णन है। जो शास्त्रों में ये वर्णन है वो कहाँ की यादगार है? जरूर कहेंगे इस संगम युग की बातें ही शास्त्रों में हैं। परंतु पुरुषोत्तम संगम युग का ज्ञान न होने के कारण वो इन राइट बातों को सुना ही नहीं सकेंगी। वो सब सुनाने वाले हैं एनराइटीएस। वहां भक्ति मार्ग में सभी कुछ एनराइटीएस है। राइटीएस राज्य, राइटीएस धर्म, वो तो यहां स्थापन होता है। जहां सभी राइटीएस ही चलते हैं अभी राइटीएस राज्य और राइटीएस धर्म की स्थापना हो रही है ना, तो कहेंगे कि राइटीएस और अनराइटीएस आधा आधा है। राइटीएस धर्म और राइटीएस राज्य सतयुग से शुरू होकर के त्रेता के अंत तक चलता है। फिर राइटीएस से अनराइटीएस बन पड़ते हैं। सतयुग और त्रेता में राइटीएस राजा होते हैं, गैन भी है, सत्यनारायण की कथा भी प्रसिद्ध है। वो सतयुग का नारायण था, राम राज्य का भी कितना वर्णन है। गाते भी हैं राम राजा राम प्रजा राम साहूकार। ये नगरी बसे दाता धर्म का उपकार, तो तुम बच्चे अभी राइटीएस धर्म और राइटीएस राज्य, अनराइटीएस धर्म और अनराइटीएस राज्य दोनों को जान गए हो। परंतु इन बातों को न सतयुगी देवताएं जान सकते हैं और न ये कलयुगी मनुष्य जान सकते हैं। इन बातों का कंट्रास्ट सिर्फ पुरुषोत्तम संगमयुगी ब्राह्मण ही कर सकते हैं। अन्य संगम युगी ब्राह्मण भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हों को तो पुरुषोत्तम कौन है इस बात का पता ही नहीं है। ये तो पढ़ाई है, परंतु आदत पड़ी हुई है तो मुरली मुरली कहते रहते हैं। अभी तुमको तो डायरेक्ट मुरली आई है, उन्होंने तो मुरली पढ़ी है, बुक्कुक वंशावली ब्राह्मण डायरेक्ट मुरली नहीं सुन सकते। तुमको तो फर्स्ट क्लास मुरली मिलती है, उनको तो सेकंड क्लास टैप रिकॉर्डर की मुरली भी समझ में नहीं आवेगी। क्योंकि वृद्ध ब्रह्मा के तन से पोपली आवाज में बोली हुई मुरली है, वो सिर्फ मुरली पढ़ते हैं। काजगर की मुरली सुनाते हैं, उनकी तो है थर्ड क्लास मुरली। और मुरली नाम भी उन्होंने कृष्ण का उठाई लिया है, ये भी नहीं जानते हैं कि वो मुरली काठ की मुरली क्यों है। कहा भी जाता है कठ बुद्धि, जड़त्व में बुद्धि, तो अभी इन कुख वंशावली ब्राह्मणों को क्या कहें? कठ बुद्धि है ना, कहेंगे फलाने दिन की फलाने तारीख की वाणी आई है। अब वाणी अक्षर तो ठीक है, ये जो मुरली मुरली कहते रहते हैं ये मुरली अक्षर निकल जाना चाहिए उनके मुख से। मुरली तो सिर्फ उसे कहा जाता है जो डायरेक्ट मुख से बजाई जाती है। तो मुरली अक्षर निकाल देना चाहिए, परंतु उनको बतावे कौन? नहीं तो फिर कृष्ण की मुरली याद आवेगी। अब तुम तो जानते हो कि ये वाणी तो इस मुख रूपी पोलार से निकलती है, मुरली कोई कागज से नहीं निकलती। असली मुरली टैप रिकॉर्डर या टीवी से भी नहीं निकलती, اس کو بھی فرسٹ کلاس مرلی نہیں کہیں گے. اس لیے دنیا میں آج بھی آکاشوانی کہتے ہیں. آکاش تو اونچا ہے نا, یہ آکاش تتو ہے. تو آکاش تتو سے وانی نکلتی ہے. اس مکھ روپی پولار کا کنیکشن آکاش سے ہے. یہ پولار ہے نا, یہ مرلی شبد میٹھا ہے. آگے چل کر کے چند بھی ہو سکتا ہے. ابھی تو بچے سمجھتے ہیں, جو کچھ سنتے سمجھتے ہیں وہ ڈرامہ ہے. وہ حد کا ڈرامہ ہوتا ہے, یہ بے حد کا ڈرامہ ہے. باپ کو ہی کہا جاتا ہے نالس فل. ماں کو کوئی نالس فل نہیں کہا جا سکتا. ماں کا کنیکشن گھر پریوار کی چار دیواری سے ہوتا ہے. باپ تو ساری دنیا میں گھومتا پھرتا ہے. ان کوکوانشاولی بھکتوں نے جانی جانن ہار نام سنا ہے تو سمجھتے ہیں کہ وہ سبھی کے دلوں کو جاننے والا ہے. اچھا, وہ سبھی کے دلوں کو جاننے والا ہے, اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو سبھی باتیں سیکھتے ہیں. سیکھنے کے کارن ان کو دو پیسے مل جاتے ہیں. یہ ان کی کمائی کا راستہ ہے. اور ابھی جو تم باپ سے کمائی کرتے ہو, وہ کمائی کوئی اس دنیا کی نہیں ہے. یہ راجیوگ تمہارا بھوشیہ کے لیے ہے. کوئی نئے نئے آ جاتے ہیں تو سن کر کے مجھ جاتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی پرشوتم سنگم یوگ کا تو کسی کو پتا ہی نہیں ہے. بھکتی مارگ میں سبھی پرشوتم مارس مناتے ہیں. پرنتو ارتھ رہت مناتے ہیں. پرشوتم کا کیا ارتھ ہے وہ کسی کو پتا ہی نہیں ہے. ابھی تم کو تو یتھارتھ سمجھایا جاتا ہے. تو यथार्थ है और अयथार्थ का तुमको अभी पता पड़ा है। जबकि तुमको बाप द्वारा यथार्थ बातें बताई जाती हैं, वो है भक्ति। और बाप आकर के ज्ञान से दिन कर देती है, भक्ति से तो रात हो जाती है। तो अब कोई बतावे कि जब भक्ति से रात हो जाती है, ज्ञान से दिन हो जाता है, तो वैराग किसका होना चाहिए? रात का वैराग होना चाहिए या दिन का वैराग होना चाहिए? है, रात को अज्ञान कहा जाता है, तो रात का ही वैराग होना चाहिए ना। रात से वैराग होता है तो फिर दिन आता है। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते भी हैं, बिनु वैराग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अभी तुम तो जानते हो कि राम बाप को कहा जाता है, राम बाप ही आकर के ज्ञान दिन करते हैं। भक्ति की रात से तुमको वैराग आ जाता है। और वैराग भी नंबरवार आता है, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो कोई बच्चे तो बहुत बुद्धिमान होते हैं, फौरन धारणा कर लेते हैं। कोई तो ऐसे बुद्धू होते हैं कि उन कठ बुद्धियों को धारणा होती ही नहीं। अब तुम तो जानते हो कि उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ तो होते ही है ना। अब बताओ, इस बेहद के स्कूल में उत्तम पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे कौन हैं और मध्यम पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे कौन हैं? और कनिष्ठ कौन हैं? कौन बतावेगा? है? है? हाँ जी, जो बाप के सन्मुख पढ़ते हैं वो उत्तम है। सन्मुख की भी व्याख्या चाहिए, देखने में तो सन्मुख बैठते हैं परंतु बुद्धि बाहर की दुनिया में भागती रहती है, या तो सामने बैठ करके भी सोते रहते हैं, उबासी मारते रहते हैं। तो उनको सन्मुख कहेंगे या विमुख कहेंगे? तो असल में जो सन्मुख बच्चे हैं उनके लिए बोला है कि जो मेरे सन्मुख आकर के दो शब्द भी सुनते हैं, धारण करते हैं, तो वो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेंगे? और कौन से स्वर्ग की बात है? ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स, दादा लेखराज के फॉलोअर्स स्वर्णिम संगम युग में आवेंगे या सिर्फ स्वर्ग में आवेंगे? तो किसको कहेंगे उत्तम और किनको कहेंगे मध्यम? है
आने वाले उत्तम
जो संगम युगी स्वर्णिम स्वर्ग में आवेंगे, बाप से डायरेक्ट सन्मुख पढ़ाई पढ़ते हैं, वो हुए उत्तम। बाकी स्वर्ग में तो जाते हैं, सतयुग में जाते हैं, परंतु शरीर के साथ अपने शरीर के साथ संगम युग में बाप से बादशाही नहीं ले पाते, उनको क्या कहेंगे? मध्यम। और फिर कनिष्ठ कौन हुए? है
सतयुग में दूसरे जन्म के बाद में आने वाला,
जो सतयुग के आदि अर्थात स्वर्णिम संगम में भी नहीं आते, ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स की तरह स्वर्ग में भी नहीं आते, वो स्वर्णिम संगम युग में भी नहीं आते, परंतु स्वर्ग में आते हैं। परंतु जो स्वर्ग के पहले जन्म में भी नहीं आते हैं, सतयुग में भी नहीं आते हैं, 16 कला संपूर्ण नारायण के युग में भी नहीं आते हैं, कम कला के नारायणों में आते हैं, उनको क्या कहेंगे? कैसी पढ़ाई पढ़ने वाले हैं? कनिष्ठ पढ़ाई पढ़ने वाले हैं। तो किसको बहुत थोड़ा समझ में आता है, किसको तो कुछ भी नहीं आता है। हाँ, आवाज मीठा लगता है, बातें बड़ी मीठी मीठी लगती हैं, तो बातों के मिठास में फंसे रह जाते हैं। वो अक्षर सुनते तो हैं, लेकिन सुन करके फिर भूल जाते हैं। ऐसा भूल जाते हैं जो रिपीट भी नहीं कर सकते। फिर जाकर के औरों के सामने कहते हैं, हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। हमने इतना गहराई से नहीं उठाया है। बाप भी कहते हैं, पढ़ा हुआ तो सभी, क्या करना है? है? भूल जाना है। ये नई पढ़ाई है, आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। अपनी आत्मा को भी सतो प्रधान बनना है। और इस पढ़ाई से संसर्ग संपर्क में संबंध में आने वाले औरों को भी सतो प्रधान बनाना है। परंतु बाप कहते हैं कितने भी तूफान आते हैं परंतु डरना नहीं है। कोई बच्चे कहते हैं बाबा स्वप्न बहुत आते हैं, बाबा कहते हैं कि सभी से जास्ती स्वप्न तो हमारे पास आते हैं। फर्स्ट तो मैं हूं ना, माया का अपोजिशन करने वाला। तो बाप कहते हैं ये माया के तूफान, मायावी संकल्प और ये स्वप्न, ये सब माया के तूफान हैं। और स्वप्न तो अज्ञान काल में भी बहुत आते हैं। परंतु अभी तो तुम सचमुच देवता बन रहे हो, जानते हो कि हम पहले भी स्वर्गवासी देवता थे। ये भारत ही स्वर्ग था, सिर्फ नाम लंबा दे दिया है। है सिर्फ 5000 वर्ष की बात। जब भारत स्वर्ग था उस भारत की अपरम अपार महिमा है। कहे में है, भक्ति मार्ग में भी अपरम अपार महिमा है, और भक्ति मार्ग में शास्त्रों के आधार पर अपरम अपार महिमा है। ये महिमा किस समय की है? कनिष्ठ पढ़ाई पढ़ने वाले ब्राह्मणों की है, मध्यम पढ़ाई पढ़ने वाले ब्राह्मणों की है, या उत्तम ब्राह्मणों की ये महिमा है? तुम सुना सकते हो कि ये भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था। जिसकी महिमा शास्त्रों में गाते आए हैं, اسے انگریزی میں ہیون کہتے ہیں. تو لگاتار ون کیا ہوگا نا. یا ہار کھائی ہوگی. شاستروں میں بھی لکھا ہے کہ سارے سنسار کے بیچ ایک نارائن ہی ایسا پاٹداری ہے جس نے کبھی بھی ہار نہیں کھائی, سدیو وجے ہی وجے پراپت کی ہے. تو نام کیا رکھ دیا ہے؟ نہیں, وجے ہی وجے ہے تو نام رکھ دیا ہے ہیون. وہ بھی تم سمجھتے ہو کہ بھارت میں گاڈ گاڈس کا راج تھا, دیوی دیوتاؤں کا راج تھا, اور دیوی دیوتا کنہیں کہا جاتا ہے؟ کم کلا والوں کو دیوی دیوتا کہا جاتا ہے. وہ سدیو دیوی دیوتا دھرم میں رہتے ہیں یا جنہوں نے سدیو جیت پائی ہے ان کو دیوی دیوتا کہا جاتا ہے؟ بل ہیں تو نمبر وار, پرنتو دیوتا کن کو کہا جاتا ہے؟ سولہ کلا سمپورن کو دیوتا کہا جاتا ہے, اور جنہوں نے پورے 84 جنم لیے ہیں, 84 جنموں میں ایک ورش بھی کم نہیں, تو کب کی بات ہے؟ ضرور پرشوتم سنگم یوگ کی بات ہے جو آج سے 5000 ورش پہلے ہوا. جب گاڈ گاڈیز کا راج تھا بھارت کے لیے تو سبھی کی عزت ہے, دیوتا کن کو کہا جاتا ہے؟ دیوتا کا ارتھ کیا ہے؟ تو عزت لینے والے یا سبھی کو عزت دینے والے؟ لینے کی تو بات ہی نہیں, وہ تو داتا کے بچے داتا ہی کہے جائیں گے. تو جانتے ہیں کہ ہیون تھا, ابھی وہ بھارت غریب بنتے ہیں تو سبھی ان کو مدد دیتے ہیں. وہ بھی مدد دینے والے کس لیے مدد دیتے ہیں؟ किस लिए मदद देते हैं? है भारत पर उपकार करने के लिए मदद देते हैं या अपनी ही कमाई करने के लिए मदद देते हैं? ये बेहद की बातें हैं। हद में जिनकी बुद्धि रहती है वो नहीं समझ सकते। तुम बच्चे तो अच्छी रीति जानते हो, कि हम अपने लिए ही सब कुछ करते हैं। फिर से स्थापना कर रहे हो, वो ही ईश्वर की स्थापना होने हो रही है। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनते हो। और श्रीमत पर सारी सृष्टि श्रेष्ठ बनी है। सारी सृष्टि माने है? सारी सृष्टि माने कितने? 500-700 करोड़ श्रीमत पर श्रेष्ठ बने हैं। है 9 लाख बने हैं, माने सारी सृष्टि पर श्रेष्ठ बनी है। ये बात बाबा ने झूठ बोली? सारी सृष्टि कैसे श्रेष्ठ बनी है? सभी धर्मों के जो बीज हैं, वो बीज ही सारी सृष्टि है। आधार मूर्त नहीं है सारी सृष्टि में। तना, टहनिया, पत्ते वो सृष्टि में नहीं है? सृष्टि वृक्ष में नहीं है क्या? है तो सारी सृष्टि कैसे श्रेष्ठ बनी? है
बीज में सारी सृष्टि समाई हुई है।
बीज की याद में सारी सृष्टि समाई हुई है। तो 500 करोड़ श्रेष्ठ बने? अरे बने तो कब बने? हैं? अरे कब बने? 500 करोड़ सारी सृष्टि कब श्रेष्ठ बनी? अरे कब? कब माने समय बताओ। हैं? पुरुषोत्तम संगम युग पर श्रेष्ठ बनी सारी सृष्टि। सारी सृष्टि 5000 वर्ष के ड्यूरेशन को कहा जाएगा या सिर्फ संगम युग को कहा जाएगा? सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र 500 करोड़ मनुष्य मात्र श्रेष्ठ कब बने? हैं? बाप के प्रत्यक्षता के बाद 500 करोड़ श्रेष्ठ बने? बाप को पहचानने के बाद सन 2036 से पहले सब श्रेष्ठ बन गए? अरे ये श्रेष्ठ और भ्रष्ट ये गिनती कहां की है? 2036 से पहले महाविनाश होने से पहले श्रेष्ठ या भ्रष्ट काउंट किए जाएंगे या आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे है? क्या होगा? आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे, आत्माओं को श्रेष्ठ और भ्रष्ट कहेंगे है? तो कब कहेंगे है?
पहले
हर आत्मा की प्रत्यक्षता, हर आत्मा को अपने श्रेष्ठ जन्मों और भ्रष्ट जन्मों का साक्षात्कार अभी संगम युग पर होना है। तो हर आत्मा को पता चलता है कि हम इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के कब श्रेष्ठ पार्ट बजाते हैं और कब भ्रष्ट पार्ट बजाते हैं। आत्मा परमधाम से आती है तो कैसा पार्ट बजाती है? श्रेष्ठ पार्ट बजाती है। और वापस जाने के समय से कुछ पहले कैसा पार्ट बजाती है? नीचा पार्ट बजाती है। तो जो श्रेष्ठ पार्ट बजाया है वो श्रीमत पर ही बजाया है। श्रेष्ठ मत देने वाले को पहचाना है तब ही बजाया है। नहीं तो वो श्रेष्ठ पार्ट भी नहीं बजा सकते। मान लो क्राइस्ट की आत्मा है, 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट आया, तो उसने श्रेष्ठ पार्ट बजाया या भ्रष्ट पार्ट बजाया? है श्रेष्ठ पार्ट ही बजाया। तो कहेंगे कि सारी सृष्टि की आत्माएं जो श्रेष्ठ पार्ट बजाती हैं वो श्रेष्ठ पार्ट बजाने की शूटिंग भी संगम युग पर करती हैं, और तब ही करती हैं जब बाप को पहचान करके बाप की श्रीमत पर चलती हैं। तुम भी बाप को पहचान करके बाप की श्रीमत पर चलते हो तब ही श्रेष्ठ बनते हो। जब तक मनमत पर चलते हो या मनुष्यों की मत पर चलते हो तब तक क्या बनते रहते है? भ्रष्ट बनते रहते हो। बाप की श्रीमत पर ही तुम श्रेष्ठ बनते हो। इसलिए स्वर्ग को श्रेष्ठ कहा जाता है। इसलिए बाप की उत्तम ते उत्तम एक श्रीमत बताओ जो सब के लिए एक ही है, वो क्या है? मनमना भाव भी बाद में बनेंगे, पहले तो अपन को आत्मा समझना है। अपन को आत्मा समझना इसी के लिए कहा जाता है स्वधर्मे निधनम श्रेय है। परधर्मो भयावह, पराई मत या मन मत, देवान वाली मत, ये भय उत्पन्न करने वाली है, धर्मराज की सजाएं दिलाने वाली है। इसलिए स्वर्ग को श्रेष्ठ कहा जाता है। स्व माने आत्मा, ग माने गया, अर्थात अंतमते सो गते, किस स्थिति में गया है, आत्म की स्थिति में गया। और अंतमते कब होती है? अंतमते कैसी होती है? सारा पुरुषार्थी जीवन में जैसी मत पर पुरुषार्थी रमण करता है, अंत में वैसी ही मत हो जाती है। अगर ज्ञान में आने के बाद, बाप को पहचानने के बाद, उसी समय से श्रीमत को पकड़ लिया, मनमत को त्याग दिया, मनुष्यों की मत को सर्वथा त्याग दिया, तो अंतमते कैसी होगी? है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, उसको कहेंगे असली स्वर्ग में जाने वाला। इनकी ये निशानी है, किनकी है? देवताओं की ये निशानी है। क्या निशानी है? है निशानी है कि सब देवताएं आकर्षक आंखों वाले होते हैं। देवताओं की आंखें कैसे दिखाते हैं? दिव्य नेत्र दिखाते हैं, याद में टिकने वाले के नेत्र कैसे हो जाते हैं? दिव्य हो जाते हैं। तभी बाबा कहते हैं कि प्रभात फेरी में ये दिखाओ। है क्या
प्रभात फेरी?
प्रभात माने सवेरा, सतयुग रूपी सवेरा, जहां आत्माएं कौन सी स्थिति में रहती है? आत्म की स्थिति 100% नंबर वार तो कहेंगे ही। उस समय 16 करा संपूर्ण आत्मिक स्टेज होती है। आत्मा में ज्योति पूरी ही जगी हुई होती है। और त्रेता के अंत में आठ कला कम हो जाती है। तो प्रभात फेरी में वो स्वर्ग की स्टेज दिखाओ, तब विश्व में शांति थी। उस समय सारे विश्व में एक राज्य एक धर्म और एक भाषा व्याप्त हो गई थी। तुम जो एक्ट करते हो वो एक्ट कोई नई बात नहीं है। क्यों? है? क्योंकि हर 5-4 वर्ष के बाद, हर कल्प के बाद, अनगिनत बार हमने ये एक्ट बजाई है। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते।